इशिका की हालत काफी बेहाल थी। इस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बेसुध सी हालत में स्ट्रेचर पकड़े हॉस्पिटल के गलियारे में दौड़ रही थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, फिर भी इशिका खुद को संभाल रही थी, बस अपने अभिमन्यु के लिए, जो पिछले 3 घंटे से दर्द को सहते हुए खुद की आंखें खुली रखने की कोशिश कर रहा था। अब अभिमन्यु की हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी। हॉस्पिटल पहुंचने के आधे घंटे पहले वो बेहोश हो गया था और उसकी नब्ज़ धीमी होने लगी थी। इशिका और केशव वार्ड बॉय के साथ स्ट्रेचर धकेल रहे थे। उस वक्त रात के करीब 3 बज रहे थे। हॉस्पिटल में सन्नाटा पसरा था। नाइट ड्यूटी कर रहा स्टाफ भी इस समय तक ज्यादातर आराम करने निकल जाता था। प्लीज समबडी कॉल द डॉक्टर, इट्स एन इमरजेंसी, इशिका अंदर आते हुए तेज आवाज में चिल्लाई। उसकी आंखों में आंसू थे। वार्ड बॉय ने इशिका की तरफ देखकर कहा, मैडम इस वक्त आपको कोई सीनियर डॉक्टर नहीं मिलेगा, इनकी हालत बिगड़ती जा रही है, मैं नर्सिंग स्टाफ से बोलकर टेस्ट और ओटी की तैयारी करवा देता हूँ। लेकिन डॉक्टर, जब सर्जरी अटेंड करने के लिए डॉक्टर ही नहीं होगा तो क्या मतलब है ये सब तैयारी करवाने का? आप हमें दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करवा दें, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, केशव ने गुस्से में झल्ला कर कहा। ये इस सिटी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ की फैसिलिटी टॉप क्लास है। यहाँ से पेशेंट्स कभी दूसरे हॉस्पिटल रेफर नहीं किए गए। अगर बाहर किसी को पता चला कि यहाँ से पेशेंट दूसरे हॉस्पिटल भेजा गया है तो हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब होगी और ये यहाँ के डायरेक्टर कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वार्ड बॉय ने बताया। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंस चुके। केशव गुस्से में फिर से चिल्लाने जा रहे थे कि तभी इशिका ने उनका हाथ पकड़ लिया। इशिका ने शांत लहजे में वार्ड बॉय से कहा, अगर आपके डायरेक्टर को हॉस्पिटल की इतनी ही परवाह है तो वो खुद हमारे लिए डॉक्टर अरेंज क्यों नहीं कर देते, मुझे उनसे बात करनी है। ज़रूर, लेकिन इस वक्त वो हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में पिछले 6 घंटे से एक कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करने में लगे हुए हैं। दुआ कीजिए कि उनकी सर्जरी पूरी हो और वो आपके हस्बैंड को ट्रीट कर सके। मैंने कहा ना, मैं बाकी की तैयारी करवाकर दूसरे डॉक्टर को कॉल करने की कोशिश करता हूँ, वार्ड बॉय ने आश्वासन दिया और अभिमन्यु को ज़रूरी चेकअप के लिए लेकर जाने लगा। इशिका सूनी निगाहों से अभिमन्यु को जाते हुए देख रही थी। केशव इशिका के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखकर सहलाया। वो ठीक हो जाएगा, जिस तरह से वार्ड बॉय हॉस्पिटल के बारे में बता रहा था उससे साफ है वो अपनी रेपुटेशन को लेकर कुछ ज्यादा ही कॉन्शियस है, ऐसे में वो अपने किसी पेशेंट की जान नहीं जाने देंगे, केशव इशिका को समझाने लगे। इशिका ने उनकी बात पर यकीन किया और आगे की प्रोसेस के लिए तैयारी करवाने लगी। अभिमन्यु के इलाज की प्रोसेस तो शुरू हो गई थी, अभी तक कोई डॉक्टर वहां पर नहीं पहुंचा था। लगभग 15 मिनट हो गए थे लेकिन सर्जरी शुरू नहीं हुई थी। अभिमन्यु के लिए हर एक सेकंड बहुत कीमती था और बीतते वक्त के साथ उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। जूनियर डॉक्टर वहां पहुंच चुके थे लेकिन सर्जरी के लिए अभी कोई सीनियर डॉक्टर नहीं आ पाया था, इसीलिए इशिका वार्ड बॉय के पास पहुंची। इशिका के चेहरे पर गहरे गुस्से के भाव थे। वो सख्त आवाज में बोली, यहाँ कोई मजाक चल रहा है, मेरे हस्बैंड की जान पर बनी हुई है और आप लोग एक डॉक्टर तक अरेंज नहीं करवा पा रहे हैं, हमें जबरदस्ती यहाँ पर रोक कर रखा है सिर्फ अपने हॉस्पिटल की रेपुटेशन बचाने के लिए। अगर मेरे हस्बैंड की हालत खराब हुई तो मैं आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं। वार्ड बॉय की नजरें झुक गई थी, गलती भी उसी की थी, वो दोनों तरफ से फंसा हुआ था। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर मैं जाने देता तो बात मेरी नौकरी पर आ जाती, ऐसे में सिर्फ एक ही इंसान यहाँ पर है जो उनकी जान बचा सकता है, लेकिन वो पहले ही काफी देर से एक सर्जरी में फंसे हुए हैं। आप चाहो तो उनसे बात कर सकती हैं, वो ऊपर 5th फ्लोर के ऑपरेशन थिएटर में है। इशिका ने आगे उससे कुछ नहीं कहा, वो जल्दी से 5th फ्लोर पर पहुंची। खुशकिस्मती से उसके आते ही ओटी के बाहर की लाइट बंद हुई, इसका मतलब साफ था कि अंदर चल रही सर्जरी खत्म हो गई थी। इशिका की सोनी आंखों में हल्की चमक आ गई, वो जल्दी से दौड़कर गई ताकि स्टाफ से बात कर सके। धीरे धीरे सर्जरी कर रहा स्टाफ बाहर आने लगा। उन सबकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि वो काफी थके हुए थे और वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर काफी टाइम से थे। उनमें से कोई भी एक और सर्जरी के लिए तैयार नहीं था। इशिका जल्दी से उनके पास गई, सारा स्टाफ एक आदमी के पीछे था जिसे देखकर साफ था कि वही हेड डॉक्टर है। इशिका ने उसके सामने जाकर बड़ी बेचैनी में कहा, प्लीज मेरे हस्बैंड की जान बचा लीजिए, उन्हें गोली लगी है, यहाँ कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है और उसकी हालत खराब होती जा रही है। उस डॉक्टर ने अपना मास्क निकालकर कहा, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं सीनियर डॉक्टर नहीं हूँ, वो कुछ देर पहले चेंजिंग रूम की तरफ गए थे और मुझे नहीं लगता कि वो किसी और सर्जरी के लिए तैयार होंगे, पिछले काफी घंटे से वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर हैं। तो आप चलकर सर्जरी कर लीजिए, इशिका ने जल्दी से कहा, आपने अभी अभी कहा कि उनकी गोली लगी है और उनकी हालत काफी क्रिटिकल है, ऐसे में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ वही उन्हें बचा सकते हैं, आप चाहो तो उनसे बात कर सकती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता वो हाँ कहेंगे, जूनियर डॉक्टर ने जवाब दिया। वो काफी पोलाइट लग रहा था लेकिन जिस हिसाब से वो अपने सीनियर डॉक्टर के बारे में बता रहा था उससे साफ था कि वो इतना पोलाइट नहीं होने वाला था। इशिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसने धीरे से कहा,
मैं फिर भी बात करने जाऊंगी। नर्सिंग स्टाफ में से एक नर्स आगे आई और इशिका से बोली, मैं आपको उनके पास छोड़ आती हूँ, लेकिन बात आपको ही करनी होगी। वैसे एक बात बता दूं, सर्जरी करने के बाद थकने पर उनका मूड कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाता है। मैं संभाल लूंगी, इशिका ने जवाब दिया और उसके साथ जाने लगी। तभी पीछे से दूसरे डॉक्टर ने कहा, मैं ऑपरेशन रूम में जा रहा हूँ अपनी टीम के साथ, मुझे नहीं लगता वो हाँ कहेंगे, लेकिन तब तक दूसरे डॉक्टर को कॉल करके बुला सकता हूँ जो आगे मुझे असिस्ट कर सके। सब काफी कोऑपरेटिव लग रहे थे। इशिका तेज कदमों से चलते हुए नर्स के साथ आगे जा रही थी। उसने अचानक नर्स से पूछा, अगर वो डॉक्टर इतने काबिल हैं तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें किसी भी सर्जरी से पहले इस तरह का एटीट्यूड दिखाना चाहिए। हॉस्पिटल ऐसे स्टाफ को रख भी कैसे सकता है जो किसी की जान बचाने से ज्यादा खुद के रेस्ट को इम्पोर्टेंस देता हो। एक्चुअली ये हॉस्पिटल उन्हीं का है और वो पूरे दिन इसी काम में लगे रहते हैं, कई बार रात को भी रेस्ट नहीं मिलता। ऐसे में इंसान का गुस्सा करना जायज होता है। खैर, आप उनके सामने ये सब मत बोलिएगा। यहाँ किसी को भी उम्मीद नहीं है कि डॉक्टर रायचंद हाँ कहेंगे, नर्स ने मायूसी से कहा और फिर इशिका को सामने की तरफ इशारा कर दिया। इशिका ने उसे थैंक्स कहा और वो जल्दी से वहां पर पहुंची। अंदर से नल चलने की आवाज आ रही थी। इशिका ने दरवाजा खटखटाया तो जवाब में एक सख्त और गुस्सैल आवाज आई, मैंने कहा ना मुझे रेस्ट चाहिए, बात इंपॉर्टेंट ना हो तो अंदर आने की हिम्मत भी मत करना। ये तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहा है, इशिका ने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए और खुद को मजबूत करके कहा, हेलो मिस्टर रायचंद, आपने डॉक्टर अनामिका का नाम सुना होगा। इशिका की डॉक्टर अनामिका की पहचान से हर कोई वाकिफ था, आखिर मेडिसिन में उसने काफी सारी रिसर्च की थी। इशिका आगे कुछ कह पाती उससे पहले उसकी आवाज आई, हाँ सुना है, पर उसके नाम से किसी तरह का फेवर मत मांग लेना, पिछले साल ही उसने हमारे साथ काम करने से मना कर दिया था, यहाँ तक कि मेरे भेजे हुए रिसर्च पेपर भी उसने देखे तक नहीं। देखिए, पेपर डायरेक्ट मुझ तक नहीं पहुँचते हैं, इशिका ने सफाई दी तो वो जल्दी से उसकी तरफ पलटा। उसके चेहरे पर मास्क लगा था, वो उसकी तरफ हैरानी से आंखें बड़ी करके देख रहा था। उसने जल्दी से कहा, तुम डॉक्टर अनामिका हो?
इशिका ने गहरी सांस ली और हाँ में सिर हिला दिया। उसने कहा, मैं आपके हर एक रिसर्च पेपर को देखकर उस पर पहले काम करने के लिए तैयार हूँ, मेडिसिन वाला भी देख लेंगे, पर प्लीज़ एक बार ऑपरेशन थिएटर में चलिए, आपकी ज़रूरत है, मेरे हस्बैंड को गोली लगी हुई है, उसे इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत है। इशिका बोले जा रही थी और डॉक्टर रायचंद उसे अविश्वास से देख रहे थे। उसने तो क्या किसी ने भी उम्मीद नहीं की होगी कि डॉक्टर अनामिका इतनी कम उम्र की लड़की होगी। इशिका को लगा उसे और कुछ कहने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब से बाकी लोग बता रहे थे, डॉक्टर रायचंद थकने के बाद जल्दी ही सर्जरी के लिए नहीं जाते थे। उसने इशिका की बातों को इग्नोर किया, वो उसके पास से तेज कदमों से चलते हुए निकल गया। इशिका दौड़ते हुए उसके पीछे आ रही थी। उसने आवाज़ लगाकर कहा, प्लीज़ डॉक्टर रायचंद रुक जाइए, एक डॉक्टर होने के नाते आप कैसे अपने फर्ज से पीछे हट सकते हैं, आपने मेरी बात सुनी तक नहीं। डॉक्टर रायचंद ने इशिका को कोई जवाब नहीं दिया। इशिका दौड़ते हुए उनके पीछे पहुंची तो उसने देखा डॉक्टर रायचंद तेज कदमों से दौड़ते हुए ऑपरेशन थिएटर के अंदर पहुंच चुके थे। बाहर केशव खड़े हुए थे, उन्हें देखकर इशिका ने राहत की सांस ली। केशव इशिका के पास आए और उन्होंने कहा, अच्छा हुआ जो तुमने उन्हें मना लिया, वैसे बाकी डॉक्टर ने सर्जरी चालू कर दी है, उम्मीद है पॉजिटिव रिपोर्ट मिलेगी। इशिका ने सिर हिलाया और सर्जरी खत्म होने का इंतजार करने लगी। इस वक्त उसे सिर्फ अभिमन्यु की चिंता सता रही थी, वो ये तक भूल चुकी थी कि गौतम के विला में क्या हो रहा था। दूसरी तरफ गौतम के विला में आदित्य जल्दी से लैब में आ गया था। उसने देखा वहां लगभग 10 मिनट का टाइमर सेट किया हुआ था, उन 10 मिनट में गौतम मर्चेंट को वहां से निकलना था। वहां एक ही चार मौजूद था जो गौतम मर्चेंट फीकर जा रहे थे, इसका मतलब साफ था कि आदित्य को वहां पर रहकर ही मरना था। आदित्य ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, हमने इतने मासूम लोगों की जान ली, शायद इसकी यही सजा है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने नहीं सोचा था कि अपनी पत्नी और बाकी लोगों के साथ अपनी फैमिली को भी मुझे अपने हाथों से मारना होगा, अलविदा डैड, उसकी आंखों में दर्द था। आदित्य की जिंदगी उसके सामने एक फिल्म की तरह चल रही थी। एक वक्त था जब मर्चेंट फैमिली लीगली गवर्नमेंट के लिए काम करती थी, सब कुछ अच्छा है, एक भरा बुरा परिवार और उस परिवार की लाडली बेटी राधिका थी, उन सब की जान बसती थी राधिका में, सब एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, लेकिन उन्हें वक्त इस मुकाम पर ले आया था जब आज वो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए थे। आदित्य के पास इतना टाइम नहीं था जब वो अपने इमोशंस में फंसकर देरी करें। आदित्य ने जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाने शुरू कर दिए थे, उसने वहां लगे बम का टाइमर 10 मिनट से बदल कर 30 सेकंड कर दिया था। गौतम विक्ट्री स्माइल के साथ वहां से थोड़ा ही ऊपर पहुंचे होंगे कि एक बड़ा सा धमाका हुआ जिसमें पूरा एरिया तहस नहस हो चुका था।
Da 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 da